أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. بے شک اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کو ایمان والوں سے دور کر دیتے ہیں، بے شک اللہ تعالی دشمنوں کو مومنین سے ہٹا دے گا، کیونکہ اللہ تعالی لا یحب کل خوان کفور، دگا باز دھوکہ دینے والا ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. اذن للذین یقاتلون بانہم، مسلمانوں سے جب غیر مسلم لڑتے ہیں تو ان کو بھی لڑنے کی اجازت دی، مسلمانوں کو بھی لڑنے کی اجازت دی، کیونکہ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان پر ظلم کیا گیا. بے شک اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد کرنے پر قادر ہے. پارا نمبر 17 سورۃ الحج کی آیت نمبر 38-39 پڑھی. گزشتہ سبق میں ایک آیت آئی تھی کہ مکہ کے مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو عمرہ کے لیے جانے سے روک دیا تھا. مقام حدیبیہ میں انہوں نے پھر اپنے جانوروں کو ذبح کیا اور واپس آ گئے تھے. اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو دور کریں گے، ہٹا دیں گے مومنین کے لیے. اور ویسا ہی ہوا کہ پھر 7 ہجری میں صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قضا عمرہ کے لیے پہنچے، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، کنکر دے مکہ 8 ہجری. پھر اعلان بھی کر دیا، ابو بکر صدیق سے فرمایا اب جا کے اعلان کرو، آپ امیر حج ہیں، کہ اب کے بعد کوئی مشرک کافر مکہ میں نہ آئے. حج پر گئے، اتنا آسان کہ اب قیامت تک کے لیے آسان کر دیا. یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹائے گا، دور کر دے گا. بے شک اللہ تعالی پسند نہیں کرتا خوان کو، یا لفظ کل خوان، خوان کے معنی خیانت کرنے والا، دھوکہ دینے والا، ڈیسیپشن، ڈیسیونگ دی پیپل، ان کو اللہ پسند نہیں کرتا. ایک دوسری جگہ فرمایا ان اللہ لا یحب قید الخائنین، امانت میں خیانت کرنا. حدیث میں آتا ہے یجمع المرء مع کل خلص قسلت، یجمع المرء، انسان میں ہر برائی جمع ہو سکتی ہے لیکن دو برائی ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتی، الا الکذب، ایک جھوٹ، والخیانت، دونوں کبھی جھوٹ بھی ہو اور دھوکا بھی ہو، یہ مومن میں جمع نہیں ہو سکتا، انسان میں جمع نہیں ہو سکتا. لیکن آج کوئی حکومت نہیں چلا سکتا مگر ان دونوں چیزوں کے ساتھ، جھوٹ بھی ہے اور دھوکا بھی ہے. ہم ایسا کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ایسا کر، جھوٹ ہی جھوٹ. धोखा भी दे, कारोबार भी नहीं चलता। वो कह रहे हमारा कारोबार इन लोगों के अलावा नहीं चलता, झूठ और धोखा देते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे इंसान को पसंद नहीं करता है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल खवान, जो धोखा देने वाला हो और कफूर, नशुक्र हो, बिल्कुल नहीं, धोखे को तो पसंद नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को जहन्नम में देखा, जहन्नम। फिर साहबा से फरमाया, पता है क्यों वो जहन्नम में था? उसके पास एक ऐसी लकड़ी थी, छड़ी, लकड़ी स्टिक, और उसके साथ ऐसी हुक थी। मीना में, अरफात में, मुजदलिफा में, वो किसी के जैसे आजकल पासपोर्ट बैग होती है, कुछ सामान होता है, कुछ पैसे होते हैं, देखा ये आदमी गाफिल है तो हुक के जरिए से उसकी बैग को खींचकर अपने ठेले में डाल देता था। अभी कल परसों इंडिया में देखा कि उनके कोई नई चीज निकाली कि वो गैस छोड़ देते हैं कुछ ऐसे, तो वो आदमी खुजलाया ही करता अपने सामान को रखकर, वो खुजलाता इधर ठेला उठा के ले जाते। वो आदमी क्या करता था, हुक से ऐसी थैली उसकी खींच लेता था, चूंकि वो तो काफिल है, ऐसी उठाकर अपनी बैग में डाल दिया चला। आज भी होता है, हज के मौके में देखो कितनी चोरी करते, डकैती करते, लूटमार करते, कभी जेब काट लिया। एक आलिम ने सुनाया, अभी तो मैं मक्का मुकर्रमा में अपने होटल में दाखिल हुआ, वुजू करने के लिए बैठा, मैंने बैग रखी, उसमें मेरे $5,000 थे, मैं वुजू कर रहा था, वो के बैग उठा के ले गया। ऐसे कितने पकड़े जाते हैं तवाफ के दरमियान में, पुलिस पकड़ के ले जाती है उनको, जेल में डाल देती, जेब कतरू आज भी है। तो अल्लाह तबारक व ताला धोखा देने वाला, अमानत में खयानत करने वाला, डिसीव करने वाला, उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। और दूसरा लफ्ज है कफूर, नाशुक्रा, अनग्रेटफुल, बिल्कुल नहीं, अल्लाह डजंट लाइक। मालूम होता है कि शुक्र भी एक बहुत बड़ी नेकी है, नेकियों में सबसे बड़ी नेकी शुक्र है, तो थैंक अल्लाह ताला। कुरान में अल्लाह ने एक जगह फरमा, मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह को क्या मिलता है तुम्हें अजाब देने से, इन शकर तुम, अगर तुम शुक्र अदा करो। दो चीजें बयान की, इन शकर तुम वा मन तुम, अगर तुम ईमान लाओ अल्लाह का शुक्र अदा करो तो वकान अल्लाह शाकिरन अलीमा, अल्लाह तुम्हारा शुक्र अदा करेगा। ये चीज मालूम होता है, शुक्र ये बहुत बड़ी नामत है, आदमी हर चीज पर शुक्र अदा करे। हमारे हजरत मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातहुम अलिया, कल परसों उनका मजमून पर रहा था, फरमाया मैं आजकल बहुत बिजी रहता हूं और हर वक्त मुझे इस्तिखारा की नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, तो मैं दिन में सुबह इशराक के बाद चाशत के वक्त दो रकात पढ़ लेता हूं, उसमें पांच नियत करता हूं। कितनी? पांच नियत करता हूं, दो रकात में पांच नियत। हाँ, नफल चीजों में कर सकते हैं, आपने किसी मदरसे को 200 पाउंड दिया सिर्फ अपने मरहूम के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी नियत कर सकते, अल्लाह मेरे बच्चों की शादी नहीं तो वो भी इसमें आ जाए, अल्लाह फुना मेरा, हर चीज की नियत कर सकते। फरमा उसमें एक तो सलात, सबसे पहले सलात तौबा, तौबा की नियत करता हूं उस दो रकात में, किसकी? तौबा की। नंबर दो उसमें सलात शुक्र, शुक्र अदा करता हूं अल्लाह का कि मैं जिंदा हूं, काम कर सकता हूं। नंबर तीन सलातुल हाजत, अल्लाह जितने मेरे काम जरूरी है आज पूरा फरमा। और नंबर चार सलातुल इस्तियाना, इस्तियाना के माना अल्लाह हर काम में जो डिफिकल्ट हो तो मदद फरमा, मदद के लिए, इस्तेआना कहते हैं, इस्तेआना मेरी मदद। और नंबर पांच सलातुल इस्तिखारा, इस्तिखारा की भी दुआ कर लेते हैं। ये पांच नियत, सलातुल तौबा की वो तो जरूरी है हमारे लिए, फिर सलातुल शुक्र की, फिर सलातुल हाजत की, फिर सलातुल इस्तेआना मदद के लिए, और पांचवी है सलातुल इस्तिखारा। उसमें क्या होगा? फरमाया पूरा दिन मेरा बहुत अच्छी तरह गुजरता है, कोई मुझे सवाल करता है तो अल्लाह उसका जवाब मेरे दिमाग में डाल देता है, कोई मुझे कुछ पूछता है तो वही मेरा इस्तिखारा है, उसको जवाब भी मिल जाता है, इतना काम मेरा आसान हो जाता है पूरा दिन, कोई मुश्किल नहीं। शुक्र के लिए उस पर से बात याद कि जो आदमी नाशुक्रा होता है अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। अब चूंकि मक्का वाले मुशरिकीन अल्लाह पाक ने उनको अमानत दी थी, कौन सी अमानत? सबसे पहली अमानत यह थी कि उनको सेहत तंदुरुस्ती दी थी, खाते थे, पीते थे, चलते थे। नंबर दो उनको अकल दी थी, समझ। तो सेहत और अकल के बावजूद उनको तो चाहिए था कि वो ईमान लाते, ईमान लाते, हिदायत के रास्ते को कबूल करते और काबतुल्लाह का एहतराम करते और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते, उनकी तालीम को कबूल करते। लेकिन खवान है, खयानत करने वाला अल्लाह कह रहे हैं। देखा, हम में से सब पर यह फिर होगी, अल्लाह ने हमें ईमान दिया और ताकत दी, फिर कितनी नेमतों की नाशुक्री करते। तो यह चीज है, बहुत जरूरी है। इसीलिए कुरान करीम में जगह फरमाया फमा रबिहत तिजारतुहुम, उनकी बिजनेस ने उनको फायदा नहीं दिया। ये आयत मुनाफिकीन के बारे में, मुनाफिकीन लोगों को अल्लाह पाक ने अकल दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, बजाय ईमान के उन्होंने मुनाफिकत निफाक को पसंद किया, निफाक को। तो अल्लाह ने उनको क्या कहा? उनकी बिजनेस ने, यानी उनके दिमाग ने और उनकी अकल ने, उनकी जिंदगी ने, उसके साथ कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि बजाय नफा के नुकसान उठाया। ऐसे ऐसे खवान लोग, खाइन लोग, उनको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। जब अल्लाह पसंद नहीं करता उनका क्या होता? आगे अल्लाह फरमाते उज़िन लिल्लज़ीना युकातलूना بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا, इसीलिए हदीस में आता है कुल्लु नास यगदू, हर इंसान रात गुजारने के बाद सुबह करता है, रात गुजर गई, एवरी डे इन द मॉर्निंग सुबह करता है। فَبَايِعُ نَفْسَهُ, वो अपनी जात को बेचता है, فَمُعْتِقُهَا, या तो अपने आप को जहन्नम से आजाद कर देता है, या फमूबिकुहा, या अपने आप को जहन्नम में ले जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस, मुस्लिम शरीफ, हर इंसान सुबह करता है। अब सुबह से लेकर शाम तक ऐसे आमाल करता है जिससे या तो जन्नत में जाएगा, या तो ऐसे आमाल जिससे कहां जाएगा, जहन्नम में जाएगा। इसलिए फरमाया इंसान को हर सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह आज के दिन में ऐसे काम करने की तौफीक दे जो तेरी रजा वाले हो, और ऐसे काम से मुझे बचा जिससे तू नाराज हो जाए। और आगे फरमाया उज़िन लिल्लज़ीन युकातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, ये आयत सबसे पहले नाजिल हुई, इसलिए कभी मक्का मुकर्रमा में 13 साल तक सहाबे किराम को इतनी तकलीफ दी, 13 ईयर्स तक, लेकिन अल्लाह ने उनको लड़ने का हुक्म नहीं दिया। कुरान में दूसरी जगह है, कुफू अयदीकुम वअकीमुस्सला, दो काम करो, अपने हाथ को रोको, सबर करो और नमाज पढ़ते रहो, बिल्कुल लड़ना नहीं, सबर। इसकी एक हिकमत ये समझ में आती है जो मुसलमानों में एक हिकमत बहुत जबरदस्त, किसी एक भी इंसान चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो उसको कत्ल करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत खतरनाक चीज है। किसी को कत्ल कर दिया, एक परिंदे को कत्ल करने पर जन्म में जा सकता है, जैसे मैंने पहले सुनाया था, यहां तो इंसान है। तो गोया 13 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत फरमाई, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सबर करना है, सबर करना है, ताकि जब मैं तुम्हें हुक्म दूं तो तुम अपने गुस्से को इस्तेमाल ना करें। अल्लाह ने कहा आगे बढ़ो तो आगे बढ़ेंगे, पीछे हटो तो पीछे हट जाएंगे, औरतों को कत्ल नहीं करेंगे, बच्चों को कत्ल नहीं करेंगे, और गिरजा में बैठने वालों को कत्ल नहीं करेंगे, किसी की मस्जिद को, किसी की इबादत खाने को नहीं गिराएंगे, बूढ़े को नहीं मारेंगे, फुला को नहीं, क्रिपल को नहीं, जो तुमसे लड़ने आए उसी से मारना है। ये तरबियत है, 13 साल ये हिकमत है। और आज देखो ना, बच्चे को देखते उसको बेचारे को मार दिया, औरतों को मार दिया, वो बीमार हॉस्पिटल में उनको मार दिया, डॉक्टर को मार दिया। ये इस्लाम है, इस्लाम सिखाता है तरबियत 13 ईयर्स तक। कुरान में दूसरी जगह फरमाया कुफू अयदीकुम वअकीमुस्सला, अपने हाथ को रोको, है पेशेंट। 13 साल के बाद सबसे पहले आयत ये उतरी, उज़िन लिल्लज़ीन याद का भी हुक्म नहीं है, उन्हीं का याद करो। युकातिलून किसको कहते हैं, जब तुम्हारे सामने कोई लड़ने के लिए आए तो उसका डिफेंस करो, क्या करो, डिफेंस करो। ये इस्लाम सिखाता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला देखो कैसी तरबियत हुई, दुश्मन के सीने पर बैठ गए, तलवार हाथ में है, ऐसे कत्ल कर देते, लेकिन उसने थूका हजरत अली के चेहरे पर, तो हजरत अली ने उसको छोड़ दिया, कत्ल नहीं किया। पूछा हजरत ये आपके कंट्रोल में था, आपने कत्ल नहीं किया। फरमाया पहले मैं अल्लाह के लिए उसको कत्ल करने वाला था, लेकिन जब उसने मेरे चेहरे पर थूका तो मेरा दिल कहता उसको कत्ल, यानी गुस्सा आ गया मुझे, और मैं अपने गुस्से को अल्लाह के हुक्म में शामिल करना नहीं चाहता था, सिर्फ अल्लाह के लिए, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तरबियत 13 साल तक बर्दाश्त करते रहे, यहां तक कि पहली हिजरत की कुछ लोगों ने हबशा की, और कुछ लोगों ने हिजरत की मदीना मुनव्वरा की, और कुछ लोग बीमार माजूर थे हिजरत नहीं कर सके, वो मक्का ही में रह गए। सारे सहाबा बिट गए, कोई इधर चला कोई इधर चला, और कितना भी अन्नहुम जुलिमो, उन पर जुल्म किया गया, 13 साल तक जुल्म किया गया, यहां तक के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की प्लानिंग की गई, और अपनी जगह सुलह कर आए हजरत अली को, चले आए हिजरत कर। अल्लाह के नबी जब मदीना मुनव्वरा पहुंच गए तो कुछ दिनों के बाद पूछा कि हजरत अली आए आ गए, तो किसी ने कहा हां कहां है, कहा फुला मकान में है। तो क्या हुआ उनको, कहा वो हिजरत करके आए हैं, चल चल कर उनके पैरों पे जख्म आ गया है, खून निकल रहा है, वो चल नहीं सकते, खून निकल रहा है पैरों से, चल नहीं सकते हैं। अल्लाह के नबी खुद उनकी मुलाकात के लिए वहां गए और अपना थूक लगाया उनके पैरों पर, अल्लाह ने उनको शिफा दे दी। इतना जुल्म, अबू आयाश अबू जहल का भाई है, जब हिजरत के लिए निकले तो उनको पकड़ लिया, पकड़ के उनके हाथ पैर बांध दिए और वापस मक्का में ले गए। मक्का में मुकर्रमा में ले जाकर सारी गलियों में उनको घुमाया और ऐलान किया मारते हुए, जो ऐसे जाएगा कोई भी आदमी, तो हम उनको ऐसी सजा देंगे। फिर उनको जेल में डाल दिया, कितनी तकलीफ। चाहिए तो था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मदीना मक्का मुकर्रमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा पहुंच गए, 300 किलोमीटर दूर, 300 माइल दूर, 500 किलोमीटर करीबन दूर उस जमाने में। चाहिए तो उनको छोड़ देते, चलो जाओ भागो यहां से, लेकिन वहां पर भी उनको चैन से रहने नहीं दिया। वो नहीं चाहते थे कि मदीना मुनव्वरा को मरकज बनाए और फिर जम करके सब हम पर हमला करें। उनके अंदर में वो हसद था, वो कीना था, वो दुश्मनी थी। तो वहां से मदीना मुनव्वरा तक आकर हमला करते थे, अटैक करते थे। यहां तक के मदीना मुनव्वरा में रहने वाले यहूदी लोगों ने उनको कहा, तुम आओ यहां पर, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अंदर से मुनाफिकीन ने भी कोशिश की, चारों तरफ से। तब जाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को और अंसार को बदर की लड़ाई से पहले मस्जिद नबवी में जमा किया और जमा करके उनको तकरीर की कि तुम लोगों ने कहा था, इसलिए कि मदीना मुनव्वरा में तो दो ही जमात थी, औस एंड खजरज, औस एंड खजरज। अभी तो सिर्फ एक ही सहाबा ने हिजरत की थी, मदीना मुनव्वरा में सिर्फ एक ही साहब आते मुहाजिरीन में से, बाकी तो हबशा चले गए थे, बाबी मक्का में मौजूद थे, ओनली एक ही साहब, बदर में एक ही मुहाजिरीन थे, बाकी सब अंसार थे 313 में से, 313 में से। और फिर क्या तकरीर की आपने? फरमाया, मैंने इनको समझाया, मैं अल्लाह का नबी हूं, आई एक्सप्लेन देम, मक्का मक्का वालों को, कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह ने मुझ पर कुरान उतारा है। तो उन लोगों ने बजाय मेरी बात मानने के, ईमान लाने के, उन्होंने हम पर जुल्म किया। देखिए सुमैया रजी अल्लाह तआला पहली शहीदा औरत है मक्का मुकर्रमा में, उनको शहीद किया, हजरत यासिर को शहीद किया, हारिस इब्न अबी हाला को शहीद किया, बहुत सारी मर्द औरतों को उन्होंने शहीद किया, हजरत बिलाल को कितनी तकलीफ दी। अंसार समझ गए कि अल्लाह के नबी हमसे कुछ सवाल कर रहे हैं। तो उस खानदान का सरदार खड़ा हो गया और फरमा, अल्लाह के नबी घबराओ नहीं, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं कहेंगे, फजहब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाउना कायदून, ऐ मूसा तुम और तुम्हारे खुदा जाओ लड़ो, हम तो यही बैठेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम कह दानी तरफ हम दानी तरफ जाएंगे, बाई तरफ बाई तरफ, आगे आगे पीछे, हर तरफ से हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद करेंगे। और खजरत का सरदार भी खड़ा हो गया, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुमने यूं कहा कि पहाड़ में अपनी पेशानी टकराओ हम टकरा देंगे, अगर तुमने यूं कहा घोरों को समंदर में कुदा दो हम कुदा देंगे, जम कर देंगे, हम तुम्हारे साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी और चेहरा रोशनी यानी खुशी से चमकने लगा, क्योंकि उन्होंने वादा किया था मीना में, आप आइए हम तुम्हारी मदद करेंगे। पहली लड़ाई है बदर की, उससे पहले की तकरीर है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 313 है, सिर्फ 12 या 8 तलवार है, 6 उनके पास शील्ड है, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, पैर में पहनने के जूते भी नहीं। और उधर सामने से 1000 लोग हैं। अल्लाह पाक ने इनकी मदद फरमाई, बहुत ही मदद फरमाई। तो उसी को अल्लाह पाक यहां कह रहे हैं, उذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير। शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस्लाम में दो किस्म का जिहाद है, लड़ाई है, मारेका है, एक इकदामी और एक डिफाई, एक डिफेंस है और एक आगे बढ़कर जाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मदीना मुनव्वरा के मुनाफिकीन से कहा, देखो भाई चलो हमारे साथ, उनका नहीं 300 थे नहीं आए, तो कहा भाई डिफेंस तो करो वरना ये लोग जहां हमारे औरतों को और बच्चों को गुलाम बनाएंगे, माल वगैरह लूट जाएंगे, तुम्हारा भी लूट जाएंगे, तो कम से कम तुम हमारे साथ आकर डिफेंस तो करो, ये कहा। और फिर फरमाया इकदामी लड़ाई करो, चलो हम आगे चलेंगे। उहद की लड़ाई में सारे मुनाफिकीन भाग गए, हमने कहा तो हम तो मदीना में लड़ेंगे, आप तो मदीना से बाहर निकल गए, हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ, 300 आदमी वापस चले गए, 1000 में से 700 रह गए। सहाबे किराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मदद की, فَمَا أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ। आम तौर पर ऐसा होता है जब एक कौम दूसरी कौम पर ओवर पावर हो जाती है तो उनके लोगों को कत्ल कर देते हैं। आपके सामने है ये देखो, सिहासिट्टा जो किताब है, बुखारी मुस्लिम तिर्मिजी अबू दाऊद शरीफ निसाई शरीफ इब्ने माजा है, उसमें से सिवाय इमाम मुस्लिम के बाकी सब के सब ये नॉन अरब है, बुखारा समरकंद ताशकंद उधर के रहने वाले हैं, वहां के लोगों की हालत क्या हुई, कई हजारों को शहीद कर दिया और क्या हुआ, वो अल्लाह का नाम भी नहीं ले सकते थे, अपने बच्चों का इस्लामी नाम भी नहीं रख सकते थे, स्पेन की हालत देखो कितनी, 10,000 मस्जिदों को उन्होंने शराबखाना बनाया। जब ये सुपर पावर ने हमला किया जापान पर, कितनी औरतें ले गए, उनके साथ जिना किया और 1,25,000 हरामी बच्चे पैदा हुए, जब उनके पास खर्चा नहीं तो उनको वापस भेज दिया जापान, ये तो करते हैं। बोस्निया की हालत देखो, कितने हजारों को शहीद किया, नाम नहीं ले सकते थे, न कुरान का न किताब का, दुनिया की तारीख बड़ी पड़ी है, हजारों लाखों मिलियनों बिलियनों बच्चे औरतें लोग, यहां तक के पहले जमाने में यहूदियों को कत्ल कर दिया, कहीं आपको मालूम है जब ये लोग ओवर पावर थे उन्होंने क्रिश्चियन को कत्ल, कैसा कत्ल किया कि बड़ी ट्रेंच खोदते थे खड्डा और उसमें लकड़ियां डालते थे, जब ये सूख जाती थी तो इनको पकड़ पकड़ कर इनकी औरतों को बच्चों को उनके मर्दों के सामने जलाते थे जिंदा। तारीख बड़ी पड़ी है, हमारे पास टाइम नहीं उसके अंदर जाने का, तो होता है। वइन्ना अल्लाहा अला नसरिहिम लकदीर, बेशक अल्लाह मुसलमान तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी मदद पर ताकत रखता है, लेकिन होता है सब्र करना पड़ेगा, कभी इधर कभी उधर, ये दुनिया है, आज इनका पल्ला भारी करे इनका भारी हो जाए, ऐसा होता चला आया है। और अल्लाह इसी को कह रहे हैं, अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैर हक, ये अपने मकानों से निकाल दिए गए हक के बगैर, यानी कोई राइट्स नहीं था निकालने का, क्या क्यों निकाला उनको पता है, अल्लाह खुद कह रहे हैं इल्ला अन यकूलू रब्बुना अल्लाह, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कलमा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बस उसी कलमे पर हजारों को शहीद किया, घर से बेघर। अल्लाह के नबी जब फतेह मक्का पर गए तो साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल कहां रहेंगे, हम कहां रहेंगे, हमारा तो कोई मकान ही नहीं, अकेले इब्न अबी तालिब मेरे कजन ने सारे मकान को बेच दिया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हालांकि हमारी प्रॉपर्टी मकान सब कुछ था, सब खत्म कर दिया, सारे साहबा सब कुछ ले लिया, सिर्फ कलमा पढ़ने पर उनके मकान ले लिए, उनकी प्रॉपर्टीज ले ली, उनके माल ले लिया, क्यों, सिर्फ इल्ला, आज दुनिया में यही तो है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, क्यों, कलमा पढ़ा है ना, यकूल रब्बुनल्लाह, इसी पर, वरना साहबा किराम का उन्होंने कोई किसी का न माल लूटा न चोरी की न लूटमार की मक्का मुकर्रमा में, सिर्फ इसलिए निकाला कि तुम कलमा क्यों पढ़ते हो, एक अल्लाह को मानते हो, हमारे जितने माबूद है सब अल्लाह है, सबको मानो। और अल्लाह क्या कह रहे हैं, वलौला दफउल्लाहि अन्नास बादहुम बिबाद, अगर अल्लाह ताला लोगों को डिफेंस न करता बाजों को बाजों से, कभी ये गालिब आ गया, कभी ये गालिब आ गया, कभी इन्होंने इनको कत्ल, कभी इन्होंने इनको, ऐसा दुनिया में होता रहा। अगर ये न होता, ये मारे का और जंग न होती, तो नहुद्दिमत सवाम वबियऊ, तो क्या होता, सवाम सामे की जमा है, ये ईसाइयों की खानकाएं हैं। क्रिश्चियन उस जमाने में सच्चा मजहब था, पहले जमाने में क्रिश्चियनिटी सच्चा मजहब था, यहूदियत सच्चा मजहब था, बाद में इन्होंने फिर जी ट्रैक बदल दी, तो ईसा अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह के बजाय और नबी के बजाय अल्लाह मानने लगे। वरना सभा में क्रिश्चियन लोग अपने अपने खानका बना करके उसमें बैठकर अल्लाह 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 करा करते, सभा में अल्लाह खुद कह रहा है वह भी आ, देखो ये है चर्च, वह भी आके मना बियातुन की जमा चर्च, अगर ये ना होता लड़ाई तो ये लोग सवामे को गिरा देते, खानकाओं को गिराते और चर्च को गिराते, वह सलवात उन सिनागोग को गिरा देते। मालूम होता है किसी के इबादत खाने को गिराने का हुक्म नहीं है शरीयत में, जो आदमी किसी के इबादत खाने को गिराता है तो उसकी हालत बड़ी खतरनाक होती है। अब देखिए हिंदुस्तान में मस्जिद पर चढ़कर मस्जिद के मीनारे तोड़ रहे, भाई मस्जिद तो अल्लाह का घर है, उसका क्या लेना देना तुम्हारे साथ, देखा ना भी लास्ट वीक को हुआ, मस्जिद के मीनारे तोड़ रहे ऊपर चढ़कर, जामे मस्जिद के अंदर में उनकी जो मेंबर है उसको तोड़ दिया, लाइटें तोड़ दी और कारपेटें निकाल दी और कुरान को पैरों में रोनने लगे, अभी अभी का वाक किया, कितनी मस्जिद गिरा दी इन्होंने, कितने मदरसे के बारे में अभी भी चल रहा है कल परसों का, ये फुला मदरसे को गिरा दो, फुला को गिरा दो, फुला बंद फुला बंद। जो आदमी मस्जिद मदारिस और लोगों की इबादत खाने को गिराता है तो अल्लाह उसका बदला लेता है, हुक्म नहीं है किसी भी मजहब की इबादत खाने हो उसको ना गिराओ, हुक्म नहीं है, मुसलमानों को भी हुक्म है कि किसी की इबादत खाने पर हमला ना करो, ये कह रहे अल्लाह। लहुद्दी मत सवाम वह भी आ वह सलवार, मदरसे बाज लोग सलवार से मुराद मदरसे मुराद लेते, खानका चर्च सिनागोग मदरसे वह मसाजिद, मसाजिद का भी जिक्र दे, मस्जिद भी गिरा, यूज करो फीहा इस्मुल्लाहि कसीरा, जिसमें बैठ कर अल्लाह अल्लाह किया जाता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है अल्लाह के घर में, क्या कह रहे अल्लाह वलयंसुरल्लाहु मैयंसुरू, अल्लाह मदद करेगा जो अल्लाह की मदद करेंगे, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, हम अल्लाह की क्या मदद करेंगे भाई, अल्लाह को तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह कह रहे हैं तुम मेरा काम करोगे तो फिर मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा, युसब्बित अक़दामकुम, तुम्हारे पैरों को जमा दूंगा मैं। आप देखो कितनी 50 से ज्यादा इस्लामिक रियासत है, कोई बोल रहा है कि भाई यहां फलस्तीन में गजा में कितनी मसाजिद शहीद की गई, 300, 400, 500 मसाजिद, कोई बोल रहा है, कोई नहीं, कितने कुरान को जलाया गया, हालांकि उनका क्या लेना देना है। इसीलिए इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अपनी किताब असीर सबीर असीरुल कबीर में लिखा है कि ये लोग ऐसा ही करते हैं, औरतों को और बच्चों को कत्ल कर देते हैं या उनको जेल में डाल देते हैं या उनके साथ जिना करते हैं, उनकी इज्जतें लूटते हैं और मसाजिद को गिराते हैं, कुरान को जलाते हैं, ये इनका नेचर है, लेकिन शरीयत में इसका हुक्म नहीं है किसी की किताब को जलाना, किसी की इबादत खाने को गिराना, बिल्कुल हुक्म नहीं। वलयंसुरन्नल्लाहु मैयंसुरू, ये कुरान की आयत हमें ऐसा लगता है जैसे आज उतर रही है, जो आज हालात हो रहे हैं, आज दुनिया के हालात है, देखो हमारे सामने है, यह आयत कह रही है, लेकिन 50 कंट्री इस्लामिक कंट्री चुप बैठी है, मुंह बंधा हुआ, कोई नहीं बोल रहा, चुप है। हालांकि मसाजिद क्या लेना देना, इबादत खाने से क्या लेना देना। अल्लाह कह रहा है इन तंसुरुल्लाह, क्यों हर एक को अपनी कुर्सी की फिक्र है, हर एक बड़े बड़े कई माइल में बंगले बना के बैठे हुए और से मजे कर रहे, लेकिन हर एक का वक्त आता है। अजीज, बेशक अल्लाह ताला ताकतवर है और अल्लाह ताला जबरदस्त है। स्पेन में 50,000 मस्जिद को गिरा दी गई, 50 गिराई नहीं, उसको शराब खाने बनाए। आज भी तुम चले जाओ स्पेन, घोड़े बांधे जाते हैं, हमारे एक आलिम कह रहे हम गए, 2 रकात भी तुम पढ़ने की नियत करोगे उस मस्जिद में जहां घोड़े जानवर बांधे जाते हैं, तुमको फौरन जेल मिल जाएगी। हालांकि एक जमाने में ये बड़ी मस्जिद थी, जामे मस्जिद, ये बड़ा मदरसा था, कुतुब खाना, आप कभी गए नहीं, बोझ दिया चले जाना, तारीख लिखी हुई एक जगह में पूरी तारीख, क्या हुआ मुसलमान। अब हजारों लाखों को शहीद करने के बाद वहां के बच्चों को अभी थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि इस्लाम क्या है, हमारे बाप दादा कौन थे, क्या हुआ, ये सब सारा नामो निशान मिटा दिया गया। ये कुरान देखो ना, ऐसा लग रहा है कि उतर रहा है, हमारे सामने आए थे साफ साफ। इन तमाम आयत में अल्लाह हमें सबक देता है, तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, पर अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, वो जैसा चाहे कर सकता है, लेकिन मेरे फायदे के लिए मैं अगर कुछ करूंगा, चाहे वो काम तबलीग का हो, चाहे वो काम दर्स तदरीस का हो, चाहे वो इमामत का हो, चाहे लोगों की खिदमत करने का हो, जो भी काम तुम करोगे अल्लाह के लिए तो अल्लाह जरूर तुम्हें दुनिया में भी चमकाएगा और मरते वक्त भी ईमान देगा। आपने वो सर है, हम सोच भी नहीं सकते यार कैसे इसकी मौत आ रही, देखो ना जिंदगी इसकी कैसी है लेकिन मौत कैसी आ रही है, जिंदगी में कोई ऐसे काम किए हैं अल्लाह पाक को पसंद आ जाते हैं और उसकी मौत भी अच्छी आती है, दुनिया भी बन गई, कब्र भी बन गई, आखिरत भी बन गई। ये अल्लाह कहना चाहते हैं इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु, जो अल्लाह की मदद करेगा तो अल्लाह उसकी करेगा, जिस लाइन से भी हो, जिस लाइन से आदमी मदद करेगा जिसकी भी, तो अल्लाह जरूर उसकी मदद करेगा। क्यों, अल्लाह क्या कह रहे हैं, लोग ये समझते होंगे हमें क्या मिलेगा, फरमाया मैं कवि हूं, मेरा खजाना बहुत बड़ा है, अजीज हूं जबरदस्त, यानी मुझ पर कोई ताकत नहीं रख सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई होपलेस नहीं कर सकता, मुझे कोई आजिज नहीं कर सकता, मैं अल्लाह हूं जो चाहे कर सकता। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब करे। यहां तक आयत नंबर 40 तक बाकी रखे इंशाल्लाह, फिर आगे बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह के काम के लिए कबूल फरमाए। या रहमान रहीम या जलाल वल इकराम, या हन्नान या या गफ्फार या सत्तार या يا سبوح يا قدوس يا غفور يا ودود، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير، يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن، ايمان پر قائم دائم رکھنا، ہمیں ہماری آل اولاد کو نسلوں کو ایمان پر قائم دائم رکھنا، استقامت دین دینا، اللہ بگڑنے سے پھسلنے سے گمراہی سے بچا لینا، اللہ زلالت سے بچا لے، ایمان دینے کے بعد اے اللہ کفر سے بچا لے، توحید دینے کے بعد شرک سے بچا لے، اللہ ہدایت دینے کے بعد گمراہی سے بچا لے، عبادت کی توفیق دینے کے بعد تیری نافرمانی سے بچا لے، نافرمانی والے کاموں سے بچا لے، نافرمانی والے کاموں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں تیرے دین کے لیے قبول فرما،
तू जिससे चाहे काम ले सकता है, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हमें भी अपने दीन के लिए कबूल फरमाना है, अपने दीन के लिए कबूल फरमाना है। जो भी काम हम दुनिया में करें अल्लाह तेरे लिए करे, ऐसी हमें तौफीक नसीब फरमा। दुनिया भी बना दे, कब्र भी बना दे, आखिरत भी बना दे। उम्मत के हाल पर रहम फरमा, उम्मत के हाल पर रहम फरमा। लोग आज दुश्मनी करते हैं दाढ़ी देख कर, लोग दुश्मनी करते हैं टोपी देख कर, कुर्ता देख कर, कुरान पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं। ए अल्लाह हमारी नुसरत फरमा, मुसलमानों की नुसरत फरमा, मुसलमानों की नुसरत फरमा। ये तो पहले से चला आ रहा है, अल्लाह साहब ए किराम को घरों से निकाल दिया सिर्फ कलमा पढ़ने की वजह से। ए अल्लाह वैसा तो हम पर नहीं हुआ। इलाहुल आलमीन उन जैसा सब्र हम नहीं कर सकते अल्लाह, उन जैसा सब्र हम नहीं कर सकते अल्लाह। हमारा इम्तिहान न लेना, अपने फजल व करम से, अपने ए अल्लाह रहम व करम से ईमान पर बाकी रखना, ईमान पर मौत भी देना। ए अल्लाह तुम्हें कबूल कर ले, हमसे राज़ी हो जा, हमारी इस मेहनत को कबूल फरमा, हमारी इस मेहनत को कबूल फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। जो जो लोग जहाँ कहीं हमसे बैत है, मुनसरिक है, ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह सब को ईमान पर बाकी रखना, ईमान पर मौत देना, तौबा पर मौत देना, कुफ्र से बचा लेना, शिर्क से बचा लेना। अल्लाह इस कुरान की बरकत से, दर्स की बरकत से, तेरे नाम की बरकत से, तेरे कलाम की बरकत से इलाहुल आलमीन इस मस्जिद को आबाद फरमा, आबाद करने वालों को आबाद फरमा। जहाँ जहाँ मसाजिद मकातिब है अल्लाह की उसकी हिफाजत फरमा, पूरी दुनिया में अल्लाह की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की इस्लाम की जान माल आबो इज्जत की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस्लाम दुश्मनों को ए अल्लाह तो हिदायत नसीब फरमा, हिदायत नसीब फरमा, हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह सारी दुनिया के मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह अपने फजल व करम से, रहम व करम से इलाहुल आलमीन अपने नबी के सदके, अपने अल्लाह प्यारे सहाबा जिन्होंने हिजरत की, इलाहुल आलमीन उनके सदके, इन नेक लोग जो यहाँ बैठे हैं जिनके आमीन के सदके, अल्लाह हमारी दुआ और तौबा को कबूल फरमा, हमें माफ़ फरमा, हमें माफ़ फरमा, हमें माफ़ फरमा। हमारे आलो औलाद को माफ़ फरमा, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदारों को माफ़ फरमा, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद वअलिही सहबिही।